نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مهد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي القاسم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي أصحابه وبارك وسلم. أما بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایسے مرد اور ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مرد جو دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق نیک اعمال کر کے، اور ایسے ہی عورتیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نیک اعمال کر کے، اور ایسے ہی مرد جو اللہ کی مرضی کے مطابق گناہوں کو ترک کر کے، برے کاموں کو چھوڑ کے، اور ایسے ہی عورتیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق برے کاموں کو چھوڑ کے، گناہوں کو چھوڑ کے آخرت کے اندر جب آئیں گے، یعنی دونوں کام چھوڑ کر، یہ نہیں کہ بھائی صرف ایک کام کیا اور ایک کام نہیں کیا، یہ دونوں کام کرنے کے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی ہو اور اللہ کی مرضی کے مطابق ترک گناہ بھی ہو، اپنا دخل نہ ہو، اپنی مرضی نہ چلے، اپنا نفس نہ چلے، مرضی اللہ کی چلے. جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہیں وہی کام، جو چھوڑنے کے لیے کہیں وہی کام. جب یہ دونوں کام ہوں گے، اللہ اکبر، ایسے مرد اور ایسے عورتیں جب آخرت کے اندر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان ہوگا ان کے لیے، قرآن نے اپنی زبان میں ان کے لیے ارشاد فرمایا ہے: جنات عدن یدخلونہا. ایسے عورتوں کے لیے اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ کہ خوش نصیب مردوں اور عورتوں، جنت و عدن یدخلونہا، آ جاؤ تم ایسی دائمی ہمیشہ کی جنتوں میں چلے آؤ، ایسی بہاروں میں آ جاؤ، ایسی جنت کے اندر آ جاؤ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بن چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا انعام انسان کے لیے. اور جب وہ عورتیں مرد ان جنتوں میں داخل ہوں گے، جنتوں کی بہاروں کو دیکھیں گے، جنت کے محلات کو دیکھیں گے، جنات کے نظاروں کو دیکھیں گے، تو شکر سے اللہ کی حمد کریں گے: اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہم نے دنیا کا کچھ تھوڑا سا وقت تیری مرضی کے مطابق گزارا، تو کس قدر بڑا انعام تو نے ہمیں عطا فرما دیا، کتنی خوبصورت جگہ تم نے مجھے دی. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت کا ایک نظارہ پیش فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ بھائی جب ایسے جنتی جنت میں جائیں گے تو اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں، یہاں آپ کوئی بیماری نہیں، دائمی صحت ہی صحت ہے، یہاں اب زندگی زندگی ہے، یہاں کوئی موت نہیں ہے، یہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، اب تم یہاں آ گئے ہو، جوانی ہی جوانی ہے، کوئی بڑھاپا نہیں، جتنی بھی نعمتیں یہاں موجود ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جن میں کبھی زوال ہی نہیں، तो भाई यही सबसे बड़ा इंसान को जो खौफ खतरा रहता है, यहाँ तो मौत का ही खतरा हमें सबसे बड़ा है, हर वक्त तो मौत का ही डर लगा रहता है भाई कि मर ही ना जाए कहीं, छींक आए तो मौत का खतरा, पेट में दर्द हो जाए तो मौत का खतरा, सारे खतरात उस जन्नत के अंदर ख़त्म कर दिए जाएंगे। कितनी प्यारी बातें अल्लाह ने इस कुरान के अंदर बयान फरमाई है जन्नत की। और फिर आगे फरमाया कि वमन असला मिन आबाहुम वज़वाजुहुम वज़ुर्रियातिहुम, यही ना आयत क्या पढ़ी होगी आपने, ये तो अजीब तफसीर की है हज़रत सईद बिन जुबीर रदिल्लाह तआला। इस आयत की तफसीर फरमाते हैं अल्लाह करे मैं और आप ही हूँ जन्नती अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस वक्त वो जन्नती पहुँचेंगे जन्नत में सब कुछ मौजूद होगा उनका, और किस वजह से जाएंगे मुझे तो पता है ना, आप दो वजूहत हैं क्या, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल किए होंगे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुनाह तर्क किए होंगे। दुआ करें अल्लाह ताला से हमें तौफीक नसीब हो, दिल से आमीन कहें। तो कितनी अच्छी बदल है इसका, देखिए आप थोड़ी जिंदगी इस पर आदमी कंट्रोल कर ले तो कितनी बड़ी बातें हैं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। अब जन्नत में पहुंच गए तो कुरान फरमाता है, अल्लाह की किताब कहती है कि जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे तो फिर वो कहेंगे सब कुछ मौजूद होगा, तो अल्लाह ताला देखिए कुछ ही तो देख रहे हैं वो लोग। यदि इसकी मैं आप मफहूम बयान कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला तो जन्नतियों को नाज उठाएंगे ना वहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जन्नतियों को नाज उठाए जाएंगे वहाँ पर, तो अल्लाह ताला कहेगा मेरे जन्नती कुछ तलाश कर रहे हैं यहाँ देख रहे हैं इधर, तो जन्नती आखिर बोली उठेगा कहेगा मेरी बीवी किधर है, जन्नत तो है मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे बच्चे किधर हैं, मेरी माँ किधर है, मेरा बाप किधर है, जन्नती कह रहे ये दिस पढ़ा ना सलहा मिन आबा हूँ वज़वाज हूँ वज़ुर्रियात हूँ, कुछ अल्लाह ताला से ये किधर गए हैं, उसमें कहाँ हैं तो नजर नहीं आ रहे मुझे, तो फिर ऐलान होगा अल्लाह ताला कहेगा भाई बात यह है दोस्त तू था मेरा, तुझे लोग कहते थे अल्लाह का वली है, वली अल्लाह है, नेक है, और तेरे काम मुझे सारे पसंद थे दुनिया में, तू करता था बस तेरे सिर्फ यही काम था कि तू मेरी मर्जी के मुताबिक अमल कर लेता था और कुछ भी नहीं। अगर इंसान सिर्फ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक पांच वक्त नमाज ही पढ़ ले और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नाव को तक कर दे, कोई तहज्जुद ज़रूरी नहीं, कोई नफिल नमाज नफिल रोज़े ज़रूरी नहीं, कोई इतना बड़ा मुजाहिदा ज़रूरी नहीं, ज़िंदगी में एक दफ़ा हज कर ले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, एक दस तीस रोज़े आएंगे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तीस रोज़े रख ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो यही जन्नत ही होगा जिसका ऐलान किया जा रहा है। कहीं नहीं है कि भाई आप इतने बड़े मुजाहदात करें और फला, कहीं नहीं, अल्लाह कहते मेरी मर्जी के मुताबिक, जो अल्लाह की मर्जी है उसने फ़राइज़ में बंद कर दिया, फ़राइज़ में बंद कर दिया, भाई तुम पांच वक्त नमाज़ पढ़ो जैसे मैं चाहता हूँ, कहाँ चाहते हैं अल्लाह पाक मस्जिद में चाहते हैं, ये नहीं सुबह की फजर में नींद नहीं है आँख नहीं खुली तो बिस्तर में पढ़ ली, चरपाई के साथ खड़े होकर पढ़ ली, जब आँख खुल गई सुबह घर पे कोई काम आओ नहीं हो तो नहा दो कपड़े पहने के फिर वहां खड़े हो गए, फिर अस्पे दुकान हो गए काम हो गए फिर छोड़ दी, इसका नाम अल्लाह की मर्जी नहीं है। मर्जी ये है अल्लाह ने किसी हालत के अंदर ही मेरी पांच नमाज इतनी कुर्बानी करनी पड़े कर दो, ये अल्लाह की मर्जी इतनी है सिर्फ, यही गुनाह की बात है, कितना आसान है दीना बता, हम जो समझते हैं कि अल्लाह का वली हुआ ये जन्नत के जो मुकाम जिसके लिए कहा गया है जन्नत में कहा गया है जन्नत के बारे में कितनी क्या जन्नत है, अब वह की हदीस मुझे आती जन्नत पे याद, इतनी सी बात पे अल्लाह पाक क्या देंगे वहां मुझे बताएं क्या मिलेगा, अब बुरा कहते हैं कि जन्नत में एक दरख्त होगा, क्या अजीब हदीस है जन्नत की तारीफ, एक दरख्त होगा और उस दरख्त की शान क्या होगी कि आदमी अपनी दो इशारा भी किया इशारत के अंगूठे के साथ कि तो उस दरख्त की शान होगी कि आदमी इस दो अंगुली साथ में ऐसे इशारा करेगा तो उस दरख्त की खासियत होगी फल नहीं देगा कोई फ्रूट नहीं दे रहा कोई कुछ नहीं दे रहा, उस दरख्त की शान ये होगी जैसे आदमी इशारा करेगा तो फौरन उसकी मर्जी का पता लग जाएगा और उसकी मर्जी के मुताबिक हसीन तरीन ड्रेस निकलना शुरू हो जाएंगे, मलबूसात आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दिमाग इस वक्त हैरान हो रहा है इस बात सुन के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुछ भी नहीं अल्लाह के नज़दीक, ये कोई बात है मुझे पता है। आज की साइंस आपको सामने खड़ करके क्या तमाशे करा देती है, हैं? इस पर तो कभी हम नहीं घबराते, लेकिन जब ये जन्नत की बातें आती हैं कि ऐसे होगा तो आदमी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा दख बना दिया जन्नत में, बस इशारा होगा। वो फरानी बकर इशारा किया उंगली के साथ, वो इशारा क्यों हुआ? नबी पाक ने भी ऐसे इशारा किया होगा, तुमने ऐसी हदीस पहुंचा कि इस तरह जब दरख्त की तरफ इशारा होगा तो मलबूसात निकलना शुरू हो जाएंगे, हीरे जवाहरात और मोती से सजे दरख्त होंगे, आदमी पहनेगा माशाल्लाह, और उस चीज़ की वहाँ ज़रूरत होगी, कि डिमांड हमारी होगी, हमें चाहिए होगी वो चीज़ वहाँ पर, ये नहीं कि बिला वजह होगी, हमें चाहिए होगी वहाँ चीज़, जैसे जहाँ हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, तो वहाँ भी ऐसे होगा। हर जन्नत के साथ थोड़े होगा, ये तो वही होगा जिसने अल्लाह की मर्जी, जन्नत की तो स्टेज ही है ना, जिसने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। तो अर्ज करा था सैयद बिन जुबैर बताते हैं कि फिर हो गया मेरा माँ मेरे बाप अब तो आ गए, क्योंकि माँ बाप तो तेरे जो जितने सब रिश्तेदार जो तेरी बीवी बच्चे थे, तू तो मेरा दोस्त था, ये तो आला दर्जे की इबादत थी, तो वो तो बेचारे अमल नहीं कर सके थे, ये अमल तो नहीं कर सके वो, तो वो यहाँ कहाँ? तो अब अल्लाह की रहमत के सदके वो जन्नत ही बोलेगा, अल्लाह दर्जी होगी ना उसको जन्नत ही बोलेगा। क्या कहेगा कि अल्लाह ताला वो तो ठीक है, इनके इबादत इनका स्टेटस तो वो नहीं था, लेकिन बात ये थी कि मैं जो अमल करता था, मैं जो तहज्जुद पढ़ता था, मैं जो तलावतें करता था, मैं जो नवाफिल अदा करता था, मैं जिक्र अस्कार में जो अपनी ज़िंदगी में गुजारता था, तेरी याद में जो गुरिया करता था, रातों उठ के जो रोता था, हकीकत बात ये है कि इनके अंदर उनको भी शामिल ही कर लेता था। सुभान ज़ाहिर अपनी दुआ में शामिल करते होंगे लोग, कि उनको भी मैं शामिल करता था, तो अल्लाह था ये बात है, चल ये भी फिर तेरे साथ जन्नत में चलेगी, माँ भी वहाँ जाएगी उसी मुकाम पर जो उस वली का अल्लाह वाले के दोस्त का मुकाम होगा, कितना बुलंद मुकाम होगा मुझे बताएं, उस मुकाम पर उसकी माँ भी आ जाएगी, बाप भी आ जाएंगे, बीवी भी आ जाएंगी, बच्चे भी आ जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे जो फिरते देखते हैं जो जिगर गोशियाँ हैं हमारे, जिनमें वहाँ जन्नत में। अब एक बड़ा अच्छा नुकता उसमें सुन लें कि जन्नत में पहुंचने के बाद बुरे तो मिलेंगी, लेकिन बीवी याद आएगी, या कुछ भी अल्लाह की नज़र यार वही आ जाए, हमारी डब्बी थी ना रोटी तो पकाती, ये अल्लाह ने देखें किस कदर का सिलसिला रखा है कि भाई आसान बड़ा आसान, सारी ज़िंदगी तो आपने 30-25 साल या उस गुजारे, बाप के लिए रोटी बनाई बिचारे ने मसाले बनाए, तो जन्नत में जाके हो रो चक्कर चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ भी उसकी मोहब्बत को रखा है कि जो दुनिया तुझे उड़ दी थी इंशाल्लाह फिर तुझे वही टकरेगी सबसे पहले, कहाँ जान छोड़ के जाएंगे, तो उसकी मोहब्बत कायम रहेगी। वो पता ही चलता है हदीस से कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है यहाँ वो मोहब्बतें टूटेंगी नहीं, जिस तरह बच्चे से हम यहाँ मोहब्बत कर रहे हैं तो जन्नत में वो बच्चा याद आएगा, उसको मोहब्बत कायम होगी। तो यहाँ एक चीज़ जो मैं अर्ज करूँ ये है कि देखो भाई, एक अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, नेक और साला इंसान के साथ अगर किसी के ऐसे रिश्ते मुंसलिक हो जाते हैं, एक औरत कभी कहीं ऐसे इंसान की बीवी बन जाती है, या से ऐसे इंसान का कोई माँ बाप बन जाता है, ऐसे इंसान का ही कोई औलाद बन जाती है, तो तमन्ना ना करो दुनिया की। हमारी दुनिया का अंदाज एक स्टेटस क्या बन गया, दौलत। माँ बाप भी उस औलाद को पसंद करते हैं कि जो बेचारा नेक साला हाफिज कुरान ये हो, उसको छोड़ उसके मुकाम जो दूसरा बेटा माल कमा के ला रहा हो, उसकी दुकानें चल रही होंगी, इसकी खूब मशीनें चल रही होंगी, यार ये है मेरा बेटा तो ये कोठी बनाता है, ये फलां करता है, उस बेचारे को वहाँ डाउन कर रहे हैं, अंदाजा लगे हैं। और ये हमारा मामला था दुनिया का, क्या दुनिया के मामला पे वो देखो उसका खामिद इतना कमाता है, बीवी भी उसी को देखती हैं कि जिनके पास दौलत माल हो, लेकिन अल्लाह कितनी बेहतरीन सबक दे रहा है कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती है उस इंसान की, सबसे खुशकिस्मत बीवी है, बेशक उसको दौलत नहीं मिली लेकिन ऐसा खामिद मिल गया कि जो नेक और सहला आबिद है और नेक जिंदगी गुजारने वाला है, ऐसे माँ बापों को ऐसा लड़का मिल गया, ऐसी लड़की मिल गई, बेशक कमा नहीं रहा, कुछ पैसा नहीं है, फकीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इबादत गुजार है, नेक है, गुनाहों से बचने वाला है। तो ये खुशकिस्मती है कि भाई ये तुम्हारा ताल्लुक जो हुआ है उस इंसान के साथ, ये कोई मामूली बात नहीं है, वहाँ निकालेगा तुम जन्नत के ले जाएगा। तो हमें ये चाहिए कि जब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बाप हो भी जो नेक और साला है, तो हम उससे तो वक़ात यही रखें कि भाई ये तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, हमें कोई ज़रूरत नहीं पैसों की, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें जो ये देन मिल गई ये चीज़, ये बड़ी बड़ी गनीमत मिल गई, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम मिल गया, बहुत बड़ी नेकी मिल गई, जिसकी वजह से उन सबको भी जन्नत मिले जाएगी। और यहाँ एक और बात सुन ले कि ऐसे लोगों से मोहब्बत करना भी खाली नहीं जाता, और ये हदीस बता रही है कि जो अल्लाह वाले हैं नेक इंसान हैं, अगर हम उनसे यहाँ मोहब्बत करते हैं, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया के अंदर अगर कोई अल्लाह वाला हमसे मोहब्बत करता है और हम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्ची खिदमत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो वो रहेगा नहीं जाएगा, जिस तक कोई जन्नत में जाएगा तो जिस तक वो चाहने वाले उसको याद आएंगे, तो यकीन वो इंसान भी उसको याद आएंगे जिसको दुनिया में खिदमत करते थे, जो उससे प्यार करते थे, जो उससे दिल लगाते थे, जो उसके साथ चलते थे, जो मुश्किल में काम आते थे, जो मुश्किल लम्हात में उसके साथ खड़े होते थे, तो उनको कैसे भूल जाएगा वहां। तो हदीस ये बताती है कि जिन जिनको दुनिया में मोहब्बत उससे की जाती थी या जिससे वो मोहब्बत करता था, वो जन्नत में गएगा, अल्लाह ताला उनको मुझे जन्नत में मेरे साथ कर दे, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में उसी मुकाम पे अता फरमा देंगे। ये कहना कहता है तो ये सब सलाह किस चीज़ का है, दो चीज़ों का, जब जन्नती हम दुनिया में क्या करें, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक क्या करें, अमल करें नेक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुनाहों को ख़त्म करें। आज कुरान कहता है वो मलाइकतु फरिश्ते, वो मलाइकतु यदखुलू अलैहिम मिन कुल्ली बाब, ये आज चलती है कि फिर क्या होगा उस जन्नत के लिए, क्या होगा, माँ बाप भी अल्लाह दे देगा, सब कुछ दे दिया, उसके बाद क्या कि मलाइक की टोली की टोली हजूम दर हजूम उस इंसान की तरफ बढ़ रहे होंगे हर तरफ से, बिल्कुल्ले बाप हर सिर से हर दरवाजों से जन्नत के वो हजूम लगा होगा फरिश्तों का, उस जन्नत को देखने आ रहे होंगे, उसका रिसेप्शन करने आ रहे होंगे, उसकी ज़ियारत करने आ रहे होंगे, और उनके जबानों पे क्या होगा, सलामुन अलैकुम, ये कुरान पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ने आप, सलामुन अलैकुम, उनके जबानों पे सफ ये होगा कि सलामती हो सलामती हो सलामती हो, क्या शख्स जन्नत में आया है, क्या चीज जन्नत के अंदर आ गई, मुझे बताएं क्या मुकाम होगा उस आदमी, सिर्फ क्या है चंद दिन की जिंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इबादत कर लें, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुनाहों को तर्क कर लें, बस इतनी सी बात है। तो क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम कहते आ रहे होंगे, हर तरफ से जन्नतों में ढेर लगा होगा जो जो फरिश्तों का होगा, हदीस में आता है, चल रहे होंगे, और फिर कहेंगे बिमा समर्थुम, कहते क्यों ना हो तुम्हारा ये इस्तकबाल, क्यों ना ये तुम्हें मुकाम मिले, जन्नत हो क्यों ना अल्लाह तुम्हें तुम्हें पसंद करे, क्यों ना सब कुछ तुम्हें ना अता करे, बिमा सबर तुम तो वो इंसान हो, तो वो लोग हो कि इस दुनिया को हम जानते हैं जिस दुनिया से तुम आए हो, ये तो ट्रैप है, ये तो जाल थी, ये तो बहुत बड़ा फंदा था, ये तो धोखे का घर था, जिस तरह तुम इससे बच बचा के आए हो, और जिस वक्त नफ्स तुम्हें दावतें देता था बुराइयों की, जिस वक्त ख्वाहिशात तुम्हें खींचती थी बुराइयों की तरफ, जिस वक्त नक्श तुम्हें धकेलता था, जिस वक्त दुनिया तुम्हें मजबूर करती थी कि ये काम करो जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, बिमा सबर तुम सुभान अल्लाह, तुम क्या करते थे कि तुमने अपने नफ्स को अपने ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकामात की जंजीर में जकड़ देते थे, परवाही नहीं करते थे तुम इसी नहीं, बिमा सबर तुम काबू पा जाते थे ख्वाहिशात पे कि नहीं यार नहीं, तो देख यार ये इंसान तू भी कर ले क्या फर्क पड़ता है यार, ये दुनिया आपको कहती थी, नफ्स आपको कहता था, ख्वाहिशात आपको खींचती थी कि ये कानून तोड़ दे यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिमा सबर तुमने कहा नहीं यार मैं नहीं ये काम नहीं करना, जो भी कुछ हो जाए मर जाऊंगा ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बहुत बस की बात है, तो तुमने तो इस तरह जिंदगी गुजार के अल्लाह सुब्हान तआला को राजी किया, हाँ ये जरूर है बिमा सबर तुम है जो तुम्हें तकलीफ होती होगी, क्योंकि मामूली बात तो नहीं, जब तुम लड़ते होगे अपने नफ्स के साथ ख्वाहिशात को दबाते होगे तो यकीन तकलीफ तो तुम्हें होती होगी, तो उस तफलीफ जो तुम्हें तकलीफें हुई हैं जो मुसीबतें उस वक्त होती होंगी फिक्र ना करो वो आएगा नहीं है, फनेमा अकबुद्दा ये देखो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक ने उसका अजर तुम्हें नसीब फरमा दिया। ये एक छोटी सी आयत मेरे जहन में आई थी, पढ़ा तो पढ़ा मैं तो बड़ा महजूज हुआ, आज ही पढ़ी मैं, तो भैया तुम दोस्तों के साथ बात करें इस आयत के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या खूबसूरत देखें कुरान ने हमें नक्शा खींचे, कोई मैं नवाज तैयार करके आया हूँ ना कोई मैं तकीर के मूड में था कुछ नहीं, वल्लाह बस ये एक आयत पढ़ी थी, मैं कहा चलो इसी आयत को पढ़ देते हैं, मुझे तो बड़ा मजा है इसको पढ़ने के बाद, यकीन कीजिए कि आज सारा दिन में इसी आयत को पढ़ता था, सुबह कुरान पढ़ने बैठा तो ये आयत आई ना, अल्लाह इस आयत से आगे मैं निकले ही नहीं, बहुत कोशिश की वो चल अपने जो मामलात हैं जो पूरे कर, खुदा की किस्म नहीं कर सका, इसी आयत में घूमता रहा मैं कि यार अल्लाह की रहमत देखो, हमें चंद घड़ियां दी हैं जिंदगी की, यानी जिसको इंसान जन्नत में जाएगा उसको ये याद भी नहीं होगा कि मैं साठ सत्तर रहा हूं, वो तो हवा की तरह उड़ जाएंगी तकलीफें, बिमा सबर तो मैं सब उड़ जाएंगी तकलीफें, जब वो इनामात को देखेगा कितने बड़े इनाम अल्लाह दे रहे, सोते सी यानी इतने बड़े इनाम कि ये बच्चे बाल भी हमारे साथ आ जाएंगे, यानी कि ना इनकी इबादतें ना इनका तहज्जुद, लेकिन मोहब्बत तो कायम है ना अपने बच्चे से, कितना बच्चा नाफरमान हो बाप फिर भी मोहब्बत तो करता है ना, बीवी कितनी नाफरमान हो कितना तंग करे लेकिन फिर भी उसके लिए हाथ उठ ही जाते ना दुआ के लिए, नहीं उठते, तो फिर आखिर जन्नत में जाकर उसका ये हाल होगा कि चलो जो कुछ भी है अगर उसको जन्नत मिल भी गई तो मैं तो कहां, मेरी जन्नत तो कहां, मेरा मुकाम तो कहां, वो बेचारे किसी अटलू पटलू में बैठे होंगे जन्नत में, तो अल्लाह ताला कहे ऐसा नहीं हो सकता, तू तो मेरा इतना प्यारा बंदा था, तेरी ख्वाहिश हम यहां भी पूरा कर देते हैं। हिम्मत करनी चाहिए इंसान को, हिम्मत करनी चाहिए, दुआ करे अल्लाह के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा ले, जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, फने कहती कितनी बड़ी बात कही है, फरिश्ते कहते हैं कि तुझे अल्लाह ताला ने क्या नेमतें अता फरमाई, जो खत्म ना होंगी हमेशा चलने वाली नेमतें ऐसी दे दी हैं, तो किस पता में कहेगी भाई अल्लाह ताला बस हमें भी तौफीक अता फरमाए कि बाकी जिंदगी की हमने जाय किए सारी, तो आज ही से अगर नियत कर लें उस चीज की कि इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी होगी वैसे अमल करूँ, जो अल्लाह ने हमें कहा है हम उस पर अल्लाह की मर्जी, इस वक्त ये है, वक्त के साथ होती है ना अल्लाह की मर्जी, तो सुबह अल्लाह की मर्जी है तो सुबह वैसे गुजारो, दोपहर में जो अल्लाह की मर्जी है दोपहर को वैसे गुजारो, शाम में जो अल्लाह की मर्जी है शाम को वैसे गुजारो, रात में जो अल्लाह की मर्जी है रात को वैसे गुजारो, अल्हम्दुलिल्लाह काम बन जाएगा, कहीं नहीं अल्लाह तो कहता है मैं नरमी को पसंद करता हूँ, नरमी को पसंद करता हूँ, तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें जो फ़राइज़ दी हैं इसी को हम ग्रिप कर लें जोर से, दो ही चीज़ें हमें दी हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बस अल्लाह की फरमाबरदारी करें और नबी पाक की फरमाबरदारी करें, दो ही चीज़ें हैं जिंदगी हमने पूरी करनी है और कुछ भी नहीं है, नहीं अल्लाह कहता तहज्जुद पढ़ो, वो नहीं कहता सारी रात कुरान पढ़ो, वो नहीं कहता तुम रोजे रखो, वो नहीं कहता फलां करो, कुछ अल्लाह ताला हमसे डिमांड ही नहीं करता, पूछे नहीं जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह क्या है कि क्या चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें ये मोहब्बत की चीज़ें हैं, जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है ना तो उसके भी दिल सहर नहीं होता किसी चीज से, दिल सहर नहीं होता, ये सारी निशानियां अपने आशिकों के लिए रखी हैं चीजें कि उनकी प्यास कैसे बुझेगी, पांच वक्त नमाज पढ़ के वो तो मेरा आशिक हो गया, उसका तो दिल ही नहीं भरेगा, वो कहे यार भी तुम्हें ऐसा लगे मेरा मुंह अभी थोड़ा मीठा ही नहीं हुआ, तो उसके लिए परेशान ना हो उसके लिए हमने नफली इबादत रख दी है कि तू इस कमियों को पूरा करता है इस तरीके से मेरे साथ, लेकिन मेरे जैसे टूटे फूटे आदमी अगर पांच चीजें ये पूरी कर जाए और उस तरफ भी ना जाए तो फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जन्नत का वादा फरमाया हमारे साथ, तो मेरे भाई अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच्चा दर्द अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश समझने की तौफीक भी दे और ये अमल जितनी भी जिंदगी में करने की भी तौफीक अता फरमाए।